खुदावंद के पाक और जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से जो आईने के तौर पर हमें दिया गया है, जो हमारी जिंदगी की वो तमाम हालत बयान करता है, उसमें झांकें, उसमें से देखें। और इससे पहले कि सीखें कि खुदा हमारे बारे में क्या कहता है और उसने क्या कुछ हमारे लिए किया है, आए हम दुआ करें, उसकी हिकमत और उसकी दनाई को मांगेंगे और हर तरह की फिक्र, परेशानी, सोच, ख्यालात को जो हमें खुदावन की तरफ से हटाते हैं, उनको एक साइड पर रखते हुए खुदावन की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज की सुबह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं गुजरे अयाम के लिए, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए जो इसीलिए तूने दिया है कि तेरे मकसद को पूरा करें, तेरी मर्जी को जानें। तो खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें, हमको समझने की, कबूल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले ने अहदनामों में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, आज हम उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे और उम्मीद है इन 15 से 16 मिनट में इसे मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इफ्सियों के खत में बहुत सी गहरी सच्चाइयाँ, बहुत से गहरे भेद छुपे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा खुदा के कलाम में से सीखें उतना ही हमारे लिए कम है। सो खुदावंद का बंदा पालूस हमें सिखाता है, सो मेरे साथ निकालें इफिसियों दो बाप उसकी 13वीं आयत। इससे पहले 13वीं आयत को पढ़ें, आपके लिए 11वीं आयत से सवाला को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हमारा तल्लक ना टूटे कि हम किसके बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत और शानदार और आसान तरीका बाइबल मुकद्दस का है कि ये कि जब भी किसी हिस्सा को पढ़ें एक आयत से बात ही ना करें, या एक ही आयत को लेकर बाकी पूरे किताब के हिस्सा को या खत को या उस बाप को भूल ना जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की हर एक आयत का एक दूसरी आयत के साथ तल्लक है। तो पालूस कहता है, बस याद करो तुम जो जिस्म के रो से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मखतून कहलाते हैं, तुमको ना मखतून कहते हैं, 12वीं आयत, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, और 13वीं आयत, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आज इस आयत को, 13वीं आयत को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे और इसमें से सादा तौर पर सीखेंगे, और मेरी हर रोज यही दुआ है कि खुदा बाप के जब तेरा कलाम सिखाऊं तो मुझे इस तरह सिखा जैसे कि मेरा जहन बच्चे की मानद है, ताकि जैसे मैं आसान तरीके से तेरे कलाम को समझ सकूं, वैसी ही मुझे हिकमत और दनाई दे, ताकि जब तेरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचाऊं तो तेरे लोगों की रूहों में, जिंदगियों में, उनकी सोचों में तेरा कलाम आसानी से उतर जाए, समझ आ जाए। और ये सब कुछ कौन कर सकता है? खुदा का पाक रूह। तो आज हम 13वीं आयत को सीखेंगे, इसके 3 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा, मगर तुम जो पहले दूर थे। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल उस वक्त के लोगों को याद दिलाते हुए उन्हें कहता है कि मगर तुम जो पहले दूर थे, एक वक्त था कि जब तुम खुदावन से दूर थे, और ये दूरी किस तरह पैदा हुई, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है कि जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, उसमें वो तमाम जानवर पैदा किए, तो खुदा ने आदम को भी बनाया। और जब सब कुछ देखा कि बहुत अच्छा है तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने देखा और नजर की और आदम के लिए बहुत से जानवरों को क्या किया, उसे बनाने का, उन्हें उन्हें नाम देने का उसे इख्तियार दिया। सो आदम ने जैसे वो जानवरों को नाम दे रहा था तो सब कुछ करते हुए उसने देखा कि उसकी मानद कोई भी उस जैसा नहीं है। तो खुदा ने जरूरत को देखते हुए आदम के लिए हवा को तैयार किया, उस पर गहरी नींव डाली और उसकी पसली में से क्या किया, आदम के लिए हवा को तैयार किया। तो ये वो पहला आदम और पहली औरत थी जिसे आदम और हवा कहा गया है। तो खुदा ने बनाया, खुदा ने उनको मुकम्मल माहौल बख्शा, ऐसा माहौल जिसमें कोई गुनाह नहीं था, जिसमें कोई बदी नहीं थी, जहाँ पर कोई खौफ नहीं था जानवरों से, जहाँ पर किसी जहरीले जानवर का खतरा नहीं था कि कोई उनको काट ले, और वो ऐसा माहौल था कि मुकम्मल कामल माहौल जिसमें खुदा उनसे आता, बातचीत करता और उनसे भेद की वो बातें उनको सिखाता। आदम और हवा सुकून से बाग की निगाहबानी करते थे, वहाँ पर खाते पीते थे और खुदा से उसका कलाम और यीशु मसीह से बातें करते थे। तो ये सब कुछ चल रहा था और एक वक्त में क्या हुआ कि तीसरा बाब बयान करता है कि हवा सांप से बातें करने लगी, सांप से बातें करने लगी और सांप ने झूठ बोला कि खुदा तुमसे बहुत सी सच्चाई की बातें और भेद की बातें छुपा रहा है। तो हवा उसके बहकावे में आई, हवा ने फरेब खाया और हवा ने खुदा के उस हुक्म की ना फरमानी की। और वो हुक्म क्या था कि आदम और हवा को खुदा ने कहा था कि तमाम बाग, ये तमाम जो जगह मैंने तुमको दी है, इसके हर एक दरख्त का फल तुम खाना पीना, लेकिन जो बाग के बीच में है उसे उसमें से ना खाना। लेकिन हवा ने क्या की, नाफरमानी की, और आदम ने फैसला किया अपनी बीवी की नाफरमानी में शामिल होने का, तो उसने भी नाफरमानी की और इस तरह गुनाह आया। गुनाह इंसान की जिंदगी में आया और उस गुनाह के बायस आदम और हवा खुदा की रफाकत से दूर हो गए और वो छुपना शुरू हो गए, खुदा से खौफ करना शुरू कर दिया और वो क्या हुए, शर्मिंदा हुए, वो घबराए, उनमें बहुत सी दूसरी बातों की क्या हो गई, पैदावार शुरू हो गई, खुदा से अलहदगी हो गई। तो जब यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है पहले हिस्सा में, मगर तुम जो पहले दूर थे, तो वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी जिस्मानी हालत में हम रूहानी तौर पर खुदा से दूर थे। माजी के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि आपका कल का दिन गुजर गया, आपने कल मुझे नहीं पता किसी से बात की है, अपने घर वालों से खुशी की, गमी की, किसी के साथ हंसी मजाक की, कलाम पढ़ा है, तो वो क्या किया आपने, माजी में किया, गुजर गया, किया था। तो पालूस रसूल याद दिलाता है कि तुम जो पहले दूर थे, किसके, उस गुनाह के बायस जो आदम और आदम ने किया, और तुम जो पहले दूर थे, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि ये उस गुनाह के बायस था जो बनी नूह इंसान ने किया। और इसीलिए मेरे साथ एक हवाला निकालें कि आदम के गुनाह के बायस तमाम नस्ल इंसानियत खुदा से दूर थी, इसीलिए खुदा ने चुनाव किया कि अपने बेटे को भेजे, उसके बेटे का नाम जिसे बादशाहों का बादशाह कहा गया है, उसके बेटे का नाम जिसे कहा गया है कि हकीमों का हकीम, उसके बेटे का नाम जिसे कहा गया है अजीब मशीर खुदाए कादरे मुतले, उसके बेटे का नाम जिसे कहा गया है अमानुअल, उसके बेटे का नाम जिसने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, उसका नाम क्या है, खुदावंद यसू अल मसीह। और इमाल दो बाप में जब पतरस यीशु मसीह के बारे में पैगाम दे रहा था यहूदियों को और गैर यहूदियों को, तो उसने ये बात उनको याद दिलाई कि तुमने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया, जिसे खुदा ने मसा किया था इस मकसद के लिए, मखसूस किया था कि वो तमाम जो लोग दूर हैं उनके लिए वसीला बने। तो इमाल दो बाप उसकी 39वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो लिखा है, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से, दूर के लोगों से मुराद यानी कि जो यहूदी नहीं थे, दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाता है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े बार बड़े वाजह तौर पर बयान करती है कि खुदावंद खुदा चाहता है कि जो दूर के लोग हैं, जो गैर कुआम हैं, और यहाँ तक खुदा के कलाम में आया है कि खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी से नहीं चाहता कि वो उससे अलहदा रहे और अबदी जिंदगी लहदा गुजारे। तो इसीलिए हमें कलाम खुदा में मिलता है कि खुदावंद खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि सब निजात पाएं, सब निजात पाएं, जिसमें हमें ये जिक्र मिलता है। मेरे साथ निकाले एक और हवाला, पहला तमोथियस उसका दो बाप उसकी 4 आयत में खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को लिखते हुए तमोथियस को सिखाते हुए कहता है, 4 आयत में, पहला तमोथियस दो बाप उसकी 4 आयत में पालूस रसूल कहता है, तीसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, ये हमारे मनजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। क्या पसंदीदा है खुदावंद खुदा के नजदीक, क्या खुदा को पसंद है? चौथी आयत कि खुदावंद वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। तो जब पालूस रसूल यहां पर कहता है कि तुम जो पहले दूर थे, तो वो इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि तुम्हारी दूरी को दूर करने के लिए, जैसे बहुत दफा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जब घर में लड़ाई हो जाती है, जब मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, जब रिश्तेदारों के साथ हमारी नाराजगी हो जाती है, तो बहुत दफा उस नाराजगी को दूर करने के लिए, पुराने दौर में तो जो पंचायत होती थी उसमें सुलह हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में बहुत दफा कोई ना कोई वसीला बनता है उस लड़ाई को, उस दूरी को, उस झगड़े को, उस तमाम जुदाई को दूर करने के लिए कोई ना कोई दरमियानी बनता है, तो वो सुलह करवाता है। तो यीशु मसीह के लिए पालूस रसूल कहता है कि यीशु मसीह ही वो वाहद इंसान है जो पाक है और जो इस काबल है कि जिसने खुदा और इंसान के दरमियान जो दूरी थी उनके दरमियान आकर सलीब पर जान देकर कफारा दिया। आपको याद होगा ये मंजर कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो यीशु मसीह जमीन और आसमान के दरमियान लटकाया गया, यानी कि जमीन के लोगों और खुदा के साथ तल्लक में वो दरमियान में था और दरमियानी ठहरा, इसीलिए उसे कहा गया है सुलह करवाने वाला। तो ये बात पालूस रसूल कर रहा है कि तुम जो पहले दूर थे, और दूसरी बात हम गौर क्या करेंगे, अब यीशु मसीह में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। दूसरी बात क्या है, यीशु मसीह के, अब यीशु मसीह के सबब से नजदीक हो गए हो। और यहां पर पालूस रसूल इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है उन ईमानदारों का, और आज मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप जो पहले दूर थे, जैसे कि मैं पहले दूर था, खुदा से जुदा था, रूहानी तौर पर मुर्दा था, जब यीशु मसीह को कबूल किया तो क्या हुआ, मौत खत्म हो गई, रूहानी जुदाई खत्म हो गई, खुदा के साथ रिश्ता बहाल हो गया, क्योंकि रोमियो 8 बाप उसकी 1 आयत में क्या लिखा है, किसी को ये आयत आती है, किसी को ये आयत याद है? अगर नहीं तो फिर इसे याद करें। रोमियो 8:5 उसकी पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो यीशु मसीह में है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर मौत, उन पर कोई भी हमला, उन पर कोई भी खुदा का गजब नाजल नहीं होगा, क्योंकि उन पर सजा का हुक्म नहीं बल्कि उन पर बरकत जारी हुई है। वो बरकत के फर्जंद बन गए हैं। तो पालूस रसूल इस बात को याद दिलाते कहता है कि अब मसीह यीशु में। किसी को पता है मसीह का मतलब क्या है? अगर नहीं तो सीखें। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ। मसीह जो अबरानी जुबान का लफ्ज जिसे हमें मिलता है मिसाया। तो मसीह मसा किया हुआ यानी कि मुकरर किया हुआ। और यीशु का किसी को मतलब पता है? यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। मसीह मसा किया हुआ जो निजात देने के लिए आया। और मसीह के खून के सबब से, किसके सबब से? खून के सबब से, यानी कि यीशु मसीह ने अपना कफारा दिया और उसके खून के सबब से हमारी तमाम बदियां, हमारे तमाम गुनाह, हमारी तमाम कमियां, हमारे तमाम वो गुनाह जो इंसान माफ नहीं करता, खुदा ने माफ कर दिए। और इसके लिए एक हवाला देखें कि अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मेरे साथ निकालें कुलसियों 1:5 उसकी हम 19वीं आयत से 23वीं आयत पर पढ़ेंगे और फिर ख़त्म करेंगे। और इस पर सोचें, आज जब घर जाएं तो इन हवालों को जांचें, इन बातों के बारे में सोचें कि हम दूर थे लेकिन अब मसीह यीशु में हम पर सजा का हुक्म नहीं बल्कि उसके कफारे के वसीला से हमें क्या हासिल है। यहाँ पर पौलुस कहता है कुलसियों 1:5 उसकी 19वीं आयत, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सकूनत करे, किसमें? खुदावंद यीशु मसीह में, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहाया, जो सलीब पर बहा सुला करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर लिया। सब चीजों का, सब रिश्तों का, पूरी दुनिया का मेल मिलाप यीशु के खून के वसीला से, उसके कफारा से, वसीला से कर लिया। और क्या लिखा है? खा वो जमीनियों की, खा वो जमीन की हो, खा आसमान की, तमाम चीजें खा वो जमीन की हैं, खा आसमान की हैं। और क्या लिखा है 21वीं आयत में, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। मेल का जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है यानी के मलाप, यानी के सुला, यानी के जुदाई को खत्म करके, झड़ाई झगड़े को खत्म करके, उस नातफाकी को खत्म करके जिससे हम महरूम थे, खुदा ने हमारी सुला करा दी, हमारी उसके साथ सुला हो गई। और 22वीं आयत में क्या लिखा है? ये हमारी हालत थी जो पहले खारज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस और बेऐब और बेअल्जाम बुलाकर बनाकर अपने सामने हाजिर करे। सो खुदावन ने हमें ना कि हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें क्या किया? मुकद्दस किया, बेऐब किया, बेअल्जाम ठहराया, ताकि हम उसके हजूर हाजिर हो सकें, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए वो कहता है तुम भी पाक बनो, मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। और क्या लिखा है 23वीं आयत में, पालूस कहता है इसीलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ ये उसी के लिए है, बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम रहो और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई और मैं पालूस उसी का खादम बना। आप सब मसीह के खादम हैं, आप सबको खुदा ने इसीलिए चुना है कि उसकी खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको कुवत और ताकत दे ताकि दूसरों तक ये पैगाम लेकर जाएं कि तुम दूर थे लेकिन यीशु मसीह में खुदा बाप के साथ तुम्हारा मेल मिलाप हो सकता है। सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत है। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं।